स्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
मसी महिमा, मसी महिमा हो, तेरी महिमा हो, मसी महिमा हो। ओ घर में तेरी महिमा, ओ बाहर तेरी महिमा, ओ घर में
मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार मिले। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु की संगति में रहकर स्वस्थ और भले चंगे हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन से सीखने और सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस अध्ययन में हम एक नई श्रृंखला को आरंभ करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उस श्रृंखला की बातों को सीखें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो प्रतिदिन आपके वचन को सुनने के लिए आपकी निकटता में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं, आपके वचन से मनन चिंतन करने जा रहे हैं, आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे, ताकि जो कुछ भी हम आज सुनते हैं हमारे हृदयों में काम करने पाए, हमें सिखाने पाए, ताकि हम उस वचन पर विश्वास कर आपके प्रेम में, आपके भय में अपने जीवन को बिता सकें। जो परिवार दुखी और निराश हैं, किसी रीति से अशांति में हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें, ताकि वे भी स्वस्थ और भले चंगे रहकर वो आपके नाम को महिमा दे सकें। इस समय हम सब की सहायता करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं साक्षी मंजूसा, जिसे वाचा का संदूक भी कहा जाता है। इसके निर्माण के संबंध में निर्देशन है। पवित्र स्थान अर्थात तंबू के चारों ओर एक घेरा है जो 100 हाथ लंबा और 50 हाथ चौड़ा था। एक क्यूबिट अर्थात एक हाथ नाप का वह साधन है कि लंबी अंगुली के सिरे से कोहनी के छोर तक मापा जाता है और इनके बीच की दूरी औसतन 18 इंच मापी गई है। यदि आप कद में छोटे हैं तो यह भी कम है, यदि आप ऊंचे हैं तो यह अधिक होगी। अतः सही लंबाई न करते हुए इसे 18 इंच मानते थे। निर्गमन 30 अध्याय उसके 28 पद में हम पाते हैं, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया पीतल का बनाना और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। मित्रों, पूरा पवित्र स्थान दो भागों में विभाजित था, पहला पवित्र स्थान और दूसरा महापवित्र स्थान। सिर्फ तंबू ही 30 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा और 10 हाथ ऊंचा था। पवित्र स्थान इसके 20 गुना 10 हाथ का था। महापवित्र स्थान 10 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा था। इस प्रकार एक सिद्ध निर्माण बना। लकड़ी के सामान में पवित्र मेज और सोने की दीवार तथा धूप जलाने की वेदी थी। महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक और प्रायश्चित का ढकना था। बाहर चहुदीवारी पर पीतल की वेदी पाए समेत रखी थी। हम निर्गमन 25 उसके 10 से 13 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो और उसको चोखे सोने के भीतर और बाहर मड़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना और सोने के चार कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों पर एक आलंग दो कड़े और दूसरी आलंग भी दो कड़े लगवाना। फिर बाबुल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मड़वाना। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं वाचा का संदूक तथा प्रायश्चित के ढकने के मध्य में परमेश्वर इसराइलियों से भेंट करेंगे। यही वह स्थान था जहां से वे परमेश्वर तक पहुंच सकेंगे। यह तंबू का परम पवित्र स्थान घोषित किया गया। कृपया ध्यान दें कि लकड़ी के सामान में सर्वप्रथम वाचा का संदूक बनाया गया, या हम इसे अंदर से बाहर की ओर परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कर रहे हैं। वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति में महापवित्र स्थान पर रखा है। यदि हम मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले मिलाप वाला तंबू का द्वार है, फिर पीतल की वेदी और पाए के साथ मौजूद है। इस मंडप की रचना इस प्रकार हुई कि निर्जन प्रदेश में यात्रा के समय इसराइली लोग इसे आसानी से ले जा सकें। शिविर में तो वे इसे खड़ा कर देते, परंतु दूसरे स्थान पर प्रस्थान के समय लपेट लेते थे। तंबू का प्रत्येक सामान लकड़ी वाला सोने से मड़ा, कड़े और बेड़ों से जड़े थे तथा आसानी से ढोए जा सकते थे। प्रायश्चित का ढकना जो वाचा के संदूक के ऊपर रखा जाता है, उसका लकड़ी के सामान में अलग स्थान था। हम निर्गमन उसके 25 के 17 से 19 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो और सोना ढालकर दो करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। मित्रों, ध्यान दें कि परमेश्वर आप क्या कहते हैं। निर्गमन 25 उसके 20 में लिखा है, और उन करुबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहें। मित्रों, प्रायश्चित ढकने पर करुब अर्थात दूत थे जो नीचे की ओर निहारे रहते थे। हम निर्गमन 25 उसके 21 और 22 पद में पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पात्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इसराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करुबों के बीच में से जो साक्षी पात्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। मित्रों, वाचा का संदूक एक पेटी है जो सोने से दो तरफा मढ़ी थी या बबूल की लकड़ी की बनी थी जो आसानी से नष्ट नहीं होती है। यह प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व एवं मनुष्यत्व का सिद्ध संकेत है। यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य थे। उसका ईश्वरत्व सोने से और मनुष्यत्व की लकड़ी से प्रतिबिंबित की गई है। साक्षी मंजूषा जिसे हम वाचा का संदूक कहते हैं, यह केवल एक लकड़ी ही नहीं क्योंकि वह सोने से भी मढ़ा है। इसे केवल सोने का ही नहीं कहा जा सकता क्योंकि लकड़ी पर मढ़ा है। इसमें स्वर्ण एवं लकड़ी दोनों का सम्मिश्रण होना चाहिए, तभी ख्रीष्ट को ईश पुरुष संकेत करेगा। परंतु यहाँ ऐसा सम्मिश्रण नहीं है। इस द्विविधता को नजरअंदाज करना उसके व्यक्तित्व के साथ एक भयंकर मजाक होगा। प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य और पुत्र होने का इससे बढ़कर उदाहरण सारे धर्मशास्त्र में और कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो भी इसे सरल सहज संकेत और कहीं नहीं, केवल वाचा का संदूक जो ईश्वर और मनुष्य को एक शरीर में प्रस्तुत करता है। एक केवल लकड़ी की पेटी, उस पर सोने की मढ़ी हुई वस्तु असंख्य न समझने वाली बातों के भेदों को प्रकट करती है। सचमुच ईश्वर इन मामूली बातों से बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि को चकरा देते हैं। यह छोटा सा संदूक प्रभु यीशु मसीह के आशीषित व्यक्तित्व के रहस्यमय भेदों को समझने व समझाने की संपूर्ण कथा है। मित्रों, वाचा का संदूक अंदर और बाहर से दोनों ओर सोने से मढ़ा था। कुलिसियों का कथन है कि उसके शरीर अर्थात देह में ईश्वरत्व की संपूर्ण भरपूरी निवास करती थी। प्रभु यीशु न ही केवल चमत्कारी थे परंतु आश्चर्यकर्म करने वाले थे, न ही ईश्वरीय विवेकता से भरपूर व्यक्ति थे। वह ईश्वर थे और ईश्वर समान बोलते थे। उसने अपने आप को ईश्वर के स्थान पर ही रखा। हमारे उद्धारकर्ता का कहना है जिससे हम यूहन्ना 14 उसके 1 और 9 पद में पढ़ते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? फिलिप जिसने मुझे देखा उसने मुझे देखा है। निश्चय ही वह परमेश्वर है। वह निश्चय ही सिद्ध मनुष्य था। वह थकित हुआ, सामरिया के एक कुएं पर थकाहारा बैठा। वह सोया, उसने भोजन किया। वह हंसता था और रोता भी, और इससे और भी अधिक कष्ट उठाकर मर भी गया। यह सभी मानवीय विशेषताएं हैं। वाचा के संदूक में स्वर्ण और लकड़ी दोनों की आवश्यकता है, तो भी वे सम्मिश्रित नहीं है, और न ही एक की विशेषता दूसरे में घुल मिल जाती है। यीशु पुरुष एवं ईश्वर दोनों ही थे, परंतु ये दोनों स्वभाव कभी भी आपस में घुलकर एक नहीं बन गए। उसने कभी भी एक समय में ईश्वर और मनुष्य बनकर कार्य नहीं किया। उसने जो कुछ भी किया या तो सिद्ध मनुष्य अथवा सिद्ध ईश्वर के रूप में किया। मित्र, वाचा का संदूक स्वयं में एक खाली बक्सा ही नहीं था, उसमें तीन वस्तुएं निहित थी, जैसे इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय उसके 4 में हमें बताया गया है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्दबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। मित्र, संदूक में रखी गई वस्तुएं भी सांकेतिक है। हारून की छड़ी जिसमें फल फूल आ गए प्रभु के पुनरुत्थान का वर्णन है। मन्ना का तात्पर्य यीशु है जो जीवन की रोटी है। 10 आज्ञाएं उसके शारीरिक जीवन की ओर संकेत करते हैं, जो उसके प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हुए उन भविष्यवाणियों को पूरा किया जो इसके संबंध में कही गई थी। वाचा की पट्टियां ख्रीष्ट के राजा होने की ओर संकेत करती है। वह राजा पैदा हुआ, राजा बनकर जिया और राजा के समान मरा, मृत्यु से जी उठकर राजा प्रस्थापित किया, पुनः धरती पर राजा बनकर आएगा। परमेश्वर की योजना वर्तमान में पूरी होती जाती है और अनंत काल की ओर अग्रसर है। जब एक दिन ख्रिस्त पृथ्वी पर राज करेगा तो मानव को राजा की जरूरत होगी। किसी दिन वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा बनकर उतरेंगे। मित्रों, कटोरे में मन्ना ख्रिस्त के नबी होने की ओर संकेत करता है। वह ईश्वर की चर्चा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:32 में स्पष्ट करता है, मैं सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। यीशु मसीह परमेश्वर का संदेश मानव के लिए थे। वे लोगोस अर्थात परमेश्वर का शब्द, ईश्वरीय वनवाला का प्रथम अक्षर अल्फा और ओमेगा थे। परमेश्वर का मानव के लिए अंतिम संदेश थे। चूंकि मसीह धरती पर मनुष्य और परमेश्वर बनकर उतरे थे, स्वर्ग शांत था क्योंकि ख्रिस्त के पश्चात परमेश्वर को कोई और एजेंडा बाकी नहीं रहा। उसके पास पत्र का पश्चलेख नहीं बचा क्योंकि ख्रिस्त ही पत्र का साकार था। परमेश्वर ने ख्रिस्त में अपने हृदय को उंडेल दिया था। हारून की छड़ी जो फूलने फलने लगी ख्रिस्त के महायाजकीय कार्य का संकेत करती है। नबी ईश्वर की बात मनुष्य तक पहुंचाते, पर पुरोहित मनुष्य की बात ईश्वर तक ले जाते हैं। याजक होकर यीशु ने अपना ही बलिदान दिया, याजक होकर ही स्वर्ग से गुजरा, यहां तक कि आज भी वह स्वर्ग पर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। यीशु ख्रिस्त इस मानव मृतकों में जी उठे हैं और जी उठने के द्वारा ही आज तक एक अद्भुत अलौकिक उदाहरण बने हुए हैं। प्रभु के जी उठने के दिन अर्थात ईस्टर लिली व ईस्टर संडे पुनरुत्थान के विषय नहीं बोलते, परंतु हारून की छड़ी जिसके फल फूल निकले उसकी साक्षी है। वह एक पुरानी छड़ी थी जिसमें नव जीवन दिखाई पड़ा। वाचा का संदूक यीशु ख्रिस्त के नबी, याजक और राजा होने की बात करता है, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की, अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर। इसे हम यूहन्ना 1:14 में पाते हैं। मित्रों, प्रायश्चित का ढकना वाचा संदूक के ऊपर रखा जाता था। ये पेटी के ऊपर ढक्कन था, परंतु वाचा संदूक से अलग बना था। इसका निर्माण चोखे सोने का था और दोनों सिरों पर करूप पंख सहित थे। पंख फैलाए उनकी नजर उस रक्त पर थी जो उसमें धरा था। महायाजक बलिदान का लहू इस पर छिड़कता था। रक्त व लहू से ही प्रायश्चित का ढकना बनता था। यह भी यीशु ख्रिस्त के कार्य की ओर संकेत करता है। ख्रिस्त ने अक्षरशः क्रूस की मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाकर स्वयं के लहू का बलिदान अर्पित किया। अतः तंबू जो पवित्र स्थान परमेश्वर द्वारा दिया गया यीशु ख्रिस्त का एक सजीव चित्र है। उसने लोगों को चेतावनी भी दी कि प्रत्येक बात का अक्षरशः पालन करें और ध्यान से अवलोकन करें, क्योंकि ख्रिस्त ने अपने लहू अर्थात रक्त को स्वर्ग पर चढ़ाया। मेरे इस मत को आलोचक अधिकृत एवं अशिष्ट मानते हैं, परंतु मेरे विचार से ख्रिस्त का लहू अशिष्ट नहीं वरन बहुमूल्य है। पत्रस अपने मुक्तिदाता के लहू को पहला पत्रस की पत्री उसके 1 और उसके 18-19 में कीमती कहते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसके क्रूस पर बहाए लहू को लेकर वह स्वर्ग में प्रवेश किया, जिससे परमेश्वर का सिंहासन हमारे लिए आज के दिन प्रायश्चित का ढकना बना है। आज हम ईश्वर के तख्त के सामने आमंत्रित हैं, क्योंकि तथ्य का आधार यीशु मसीह जो हमारा महायाजक और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए स्वयं अपने लहू का बलिदान चढ़ाता है। मित्रों, हम इब्रानियों के पत्री 4 उसके 14-16 में पढ़ते हैं, जहां पर हमें स्मरण दिलाया जाता है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया अर्थात परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मित्रों, आप और मैं स्वर्ग में विराजमान अपने महायाजक के द्वारा ही परमेश्वर तक पहुंचते हैं। वह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान जीवित मसीह है। उसके द्वारा हमें मदद और अनुग्रह मिलता है। अनेक विश्वासी यहाँ अकेले ही अपने विश्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं। जीवन के अनेक मुद्दों पर वे अकेले ही सामना करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, चाहे वह मैं हूं अथवा आप, हम अकेले सामर्थ्य नहीं हैं। हम इतने शक्तिशाली भी नहीं। हमें सहायता चाहिए और मसीह जो सहायता उपलब्ध कराते हैं उसे हम इस्तेमाल भी नहीं करते। पौलुस इफिसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं और वे कहते हैं कि जिस सामर्थ्य से ख्रीष्ट मृतकों में जीवित हो उठा उनमें भी कार्यरत हो। इफिसियों के पत्री 1:19-20 पद में हम इसे पाते हैं। आज विश्वासियों के अंदर यह सामर्थ्य कम देखने को मिलती है। हमें विश्वास से उसे ग्रहण करना है क्योंकि परमेश्वर के दाहिने हाथ पर हमारा ऐसा महायाजक विराजमान है जो हमारी मदद करेगा। मित्रों, इस तंबू में सेवा करने वाला महायाजक परम पवित्र स्थान के अंदर दौड़कर घुसता और प्रायश्चित के ढकने पर लहू छिड़कता और तुरंत वापिस बाहर आ जाता है। ख्रीष्ट हमारा महायाजक, उसने भेंट वाली बलि चढ़ाई, परमेश्वर के दाहिने बैठा और आज भी वहां मौजूद है। इस पृथ्वी पर वह हमें बचाने के लिए मरा। वह स्वर्ग पर हमें बचाने और जीवित रखने के लिए जीवित है। हमें उससे संपर्क बनाए रखना चाहिए। क्या आज आपकी उससे बातचीत हुई है? हमने महापवित्र स्थान के लकड़ी के सामान पर यहाँ चर्चा की है, वाचा का संदूक और प्रायश्चित का ढकना। अगले श्रृंखला में हम निवास स्थान और अन्य वस्तुओं को जो दूसरे भाग में उपलब्ध हैं उनकी चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस अध्ययन के द्वारा से अवश्य ही नई नई बातों को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि आपने अवश्य ही तंबू के बनाने में किन किन बातों को या किन किन चीजों को उपयोग में लाया गया उसके बारे में आपने सीखा और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही यह आपके व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी होगा। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की इस अध्ययन के द्वारा आप अवश्य ही लाभ प्राप्त किए हैं। आइए इससे पहले कि हम विदा हों, हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें कि ये वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके। हमारे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा से आपने हमें सिखाया है कि जो पवित्र स्थान में जो तंबू और जो वाचा और उसमें के रखे जाने वाले हर एक वस्तुएं जिसे आपने हमें दी, प्रत्येक बातें प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग और हमारे उद्धार की बातों को बताते हैं। हमारी प्रार्थना है कि हमें इसे अच्छी रीति से समझने और सीखने में मदद करें, यह जानने में मदद करें कि प्रभु यीशु आप हमारे महायाजक हैं जो हमें उद्धार दे सकते हैं, जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया ताकि हम उद्धार के आनंद को प्राप्त करें। प्रेम पिता परमेश्वर, जो भाई बहन आज किसी रीति से दुखी और निराश हैं, हमारी विनती है कि आप उन्हें भी शांति दें, उनकी भी सहायता करें ताकि वे जानने पाएं कि आप उनके महायाजक हैं और आप उन्हें शांति दिला सकते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जीवन तुम पर अर्पण कर दे हे जगदाताई, हे जगदाताई, हे जगदाताई। जीवन तुम पर अर्पण कर दे हे जगदाताई, हे जगदाताई। जीवन तुम पर अर्पण कर दे, हे जगदाता ईश, हे जगदाता ईश, हे जगदाता ईश, ओ हे जगदाता ईश, ओ हे जगदाता ईश।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। You know.